जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं इनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति काय को नामाये स्तुति को उचारी है धन धन तुम ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख तो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। संपूर्ण जिनागम का सार वीतराग भाव ही है। सिद्ध चक्र विधान में एक पंक्ति आती है, संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो, उपाध्याय परमेष्टि के लिए लिखी गई है। हे नाथ, आपने संपूर्ण श्रुत का सार जो आत्मबोध आत्मज्ञान है उसे प्राप्त किया है और संपूर्ण जिनागम को मुख्यतया चार अनुयोगों की शैली में विभक्त किया जाता है और जो अपन स्वाध्याय करते हैं अपन सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक अनुयोग में से आत्म सन्मुखता स्वानुभूति वीतराग भाव इसी का पोषण करें तभी स्वाध्याय की सार्थकता है। इसी प्रयोजन को मुख्य रखकर ये यहाँ पर विद्वत गोष्ठी चल रही है। अपन ने दो दिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आठवें अध्याय में चरणानुयोग की स्टाइल क्या है उसके बारे में चर्चा की है। क्रिया की प्रधानता से भी वर्णन होता है और परिणामों की प्रधानता से भी वर्णन होता है। क्रिया और परिणाम का समन्वय कहें या जो एक सिद्धांत में आता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, आप यूं समझिए कि परिणाम और क्रिया में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसी से चरणान योग का जन्म हुआ है। कैसे हुआ कि अंदर में पापों की तीव्रता है परिणामों में तो क्रिया में भी पापों की तीव्रता दिखेगी, मंदता है तो क्रियाओं का लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा, उनका स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। और यदि समझ लो रागांश टूटते हैं वीतराग अंश प्रकट होता है तो क्रियाओं का स्वरूप कुछ और हो जाएगा। ये जो एक वस्तु स्वरूप में व्यवस्था है निमित्त नैमित्त एक संबंध की, यदि ये न होती तो चरणानुयोग भी न होता, यानी क्रिया की प्रधानता से धर्मोपदेश न होता। इस तरह ये अंतरंग और बहिरंग की संधि की बात है। देखिए परिणामों में वीतरागता का अंश है तो क्रिया में अमृत महाव्रत आदि भाव है तो वो राग की मंदता के निमित्त से वैसी व्रतादि की क्रिया होती जितना रागांश शेष रहा उससे। लेकिन अपने को समझना हो तो क्रिया से परिणाम की ओर जाते, परिणमन की व्यवस्था में परिणाम से क्रिया की तरफ आते। लेकिन जब प्रतिपादन करना हो या समझने की बात होवे तो क्रिया से परिणाम की ओर जाते। जैसे धुआं देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है तो धुएं को अग्नि का साधन अथवा हेतु कहा जाता है। ये हनुमान की प्रयोग की भाषा है न्याय ग्रंथों में। अग्नि को साध्य कहते हैं, धुएं को साधन कहते हैं, अथवा हेतु भी कहते हैं। और ये जो बात चली है कि व्यवहार निश्चय का हेतु है, वो इसी संदर्भ में वो बात है। जगत ने तो ये समझ लिया कि व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है, यानी स्वभाव करते करते धर्म होता है, क्रिया करते करते परिणाम सुधर जाते हैं। जगत तो इस लाइन पर चला गया, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि व्यवहार साधन है, यानी निश्चय का ज्ञान करने का साधन है। गुरुदेव बार बार कहते निश्चय का ज्ञान कराने के लिए ये बात कही गई। और किसी को साधन बनाया जाए किसी साध्य को जानने के लिए, तो एक नियम काम में करता है, अन्यथा अनुपपत्ति। देखिए न्याय और चरणान योग का भी कैसा सुमेल है, अन्यथा अनुपपत्ति, यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा भी नहीं होता। यानी अगर दो कषाय का अभाव नहीं होता और दो कषायांश मात्र शेष नहीं रहते, वो रागांश उसका बाकी नहीं रहता, तो अणुव्रत भी नहीं होते। तीन कषाय का अभाव नहीं होता और संजनन मात्र का उदय नहीं होता, तो महाव्रत भी नहीं होते। तो ये अणुव्रत महाव्रत के माध्यम से वितराग भाव का ज्ञान करना, तो इससे समझ लो वितरागता का ज्ञान और वितरागता का प्रयोजन की सिद्धि, वितरागता का पोषण इत्यादि होता है। आचार्य जी कहना चाहते हैं चरणान योग में अकेली क्रिया मत देखो, वो क्रिया क्यों हो रही है यही देखो। समझ में आया? दृष्टि तो क्रिया है, उपदेश तो क्रिया प्रधान है। देखिए जैसा कि एक निश्चय व्यवहार नयों के प्रयोग का नियम है, भाषा व्यवहार की होती है और अभिप्राय परमार्थ का होता है। जैसे जगत में भाषा बच्चों से, अपन बच्चों की भाषा में ही बात करते हैं। पिताजी अपने पुत्र को ही कहेंगे मम्मी कहाँ गई है। अब ये बच्चा जिसे मम्मी कहता है, पिताजी जब बच्चे से बोलेगा तो भले आगे पीछे नहीं बोले, लेकिन जब बच्चे से बोलेगा तो मम्मी कह के ही बुलाएगा। और सब समझते हैं, तो सुनने वाले भी बच्चा भी ये सब समझता है। इस समझ है तो वो प्रयोग सही है, ये ध्यान देना जरा। अगर आशय यथार्थ समझ में है तो बच्चे से बच्चे की भाषा में बोलना उचित है, आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन वो समझ अगर नहीं है, कोई मूर्ख है तो वो पूछेगा किसकी मम्मी को बुलाना है, तो फिर वो प्रयोग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यवहार की भाषा का प्रयोग, क्रिया की भाषा का प्रयोग, स्वराग की भाषा का प्रयोग, वो तत्कालीन जो विकराग दशा है उसकी ओर इंगित करता है। इसी शैली पर ये चरणान योग खड़ा हुआ है। थोड़ी झलक में आपको ये आपके सामने स्क्रीन पर पुस्तक दिख रही होगी, इसमें 22 पेज निकाले, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, इनके माध्यम से भी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मात्र के लिए एक प्रकरण चुना है, पूरा प्रकरण तो ऑन दी होल संपूर्ण जो चरणान योग व्यवस्था है, बात तो उसकी करना है, इसे तो एक उदाहरण लेकर के समझाना मात्र है। इसका जो प्रारंभिक अंश है वो हमें ये बताएगा किस तरह से अंतरंग परिणामों की और बाह्य क्रिया की संधि है। जैसे अपन कहते हैं कि जो वास्तव में अंदर में जो अंदर की क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया बाहर व्यक्त होती। ध्यान में आया नहीं? एक और दूसरा प्रयोग छोटा मैं बीच में बताना चाहता हूँ, वो पुस्तक मैंने इसमें डलवाई नहीं है, मगर एक छंद मात्र उसका है। बनारसी दास जी ने एक प्रयोग किया है, सत्य व्यसन का उन्होंने आध्यात्मिक स्वरूप, या यूं कहो अभिप्राय वाला स्वरूप प्रस्तुत किया है। अब जैन दर्शन के आचरण के क्षेत्र में पहला कदम यदि कोई होता है तो अष्टमूल गुण का धारण और सप्त व्यसन का त्याग, ये सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए भी इन बातों की चर्चा होती। आप ध्यान दीजिए कि अगर ये हो गया तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन ये ना हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसी गारंटी है। प्रत्येक व्यक्ति यदि सत्य दर्शन का त्याग ना हो, और ध्यान दीजिए त्याग तो केवल भाषा में क्रिया की प्रधान तत्व कहा जाता है, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, मदिरा पान नहीं करना, और जो जिसका जीवन सप्त व्यसनों से मुक्त है उसके लौकिक जीवन में भी कितनी शांति और सहजता है ये अपन सब अच्छी तरह जानते। मैं इस लाइन पर ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, नहीं तो लोग वहां ये आरोप लगाते हैं कि जैनियों के पास ही सबसे ज्यादा परिग्रह रहता है, अपरिग्रह की भगवान की पूजा करते हैं और स्वयं सबसे ज्यादा परिग्रह रहते हैं। कई लोग तो इतना भी दुस्साहस करते हैं यदि छापा डाला जावे, रेत पाड़ी जावे तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के यहाँ मिलेगा। हम उनको समझाते हैं कि आप भी ऐसे हो सकते हो, बशर्ते जैनियों जैसा आचरण आपका हुए। जैन समाज व्यापारी समाज है और व्यापार में लक्ष्मी का इनपुट ज्यादा होता है और व्यसनों में आउटपुट होता है। व्यसनों में बर्बाद होती है, व्यापार में कमाई होती है। तो हम लोगों ने बर्बादी के दरवाजे तो बंद कर रखे हैं, अरे खाने पहनने में कितना खर्चा होता है, समझने की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनमें कितना खर्चा होता है, तो बाकी का जो दिखेगा ही वो फिर उसके वैभव में, उसके मंदिरों में, उसके शिविरों में, उसकी क्रियाओं में झलकेगा वो। तो तुम्हें क्यों जलन होती है? ये मेरा भजन यहाँ पर इस बात को लेकर है कि आचरण की प्रधानता में कहा जाता है कि जुआ मत खेलो, मदरा वो है उसमें छंद, जुआ आमिष मदरा दारी, चोरी आंखें तक पर नारी, ये ही सात व्यसन है भाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई, इस प्रकार का। लेकिन बनारसी दास जी ने एक अनूठा प्रयोग किया कि उन्होंने इन क्रियाओं के पीछे इन्हें हम अभिप्राय के दृष्टि से भी पहचाने। अकेला लोक में जैसे जीवा कहते हैं पैसे का हार जीत वगैरह उसका त्याग करना वो तो बहुत स्थूल बात है, वो तो कॉमन बात है। असली जुआ क्या है, असली मांस भक्षण क्या है, असली परस्त्री सेवन क्या है, जो इनका त्याग होने पर भी कायम रहता है। क्या अशुभ में हार, शुभ में जीते अरी दूत कर्म, देह की मगन ताई है मांस भक्ति वो, प्यार सो पराई सोज गही बेटी चाह चोरी, कोमती को तंग गणी का को रस चखी वो। देखो इतनी देखा हूँ अभी मैं, पाप का उदय आया तो अपने को हीन मानना, अरे मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीवन से हार गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं निकम्मा हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जिस काम में हाथ डाले उसी में असफलता हाथ लगती है, और पुण्य का उदय आया तो दुनिया का सम्राट मानने लगा। तो अशुभ में हार मानना यानी अशुभ के उदय में, तो यहाँ और अपन गहराई से विचार करें तो अशुभ भाव में, और शुभ भाव हुआ तो मैं बड़ा ऊंचा हो गया ऐसा मानना, अशुभ के उदय में ऊंचा मानना, ये द्यूत कर। अब आप सोचोगे कोई ऐसे दृष्टि वाला जीव जिसकी चैतन्य पर दृष्टि नहीं है उसको अशुभ और शुभ में भेद माने बिना रहेगा नहीं। यदि अभी चला था ना प्रवचन साल में दीपावली में, फिर से सुनिए इस बात को, शुभ और अशुभ दोनों समान कब दिखेंगे, जब इनसे भिन्न में चैतन्यमयी ध्रुव वस्तु हूँ, तो वो चैतन्य स्वभाव का दृष्टि में अपनापन और आंशिक वेदन पर्याय में होगा तो राग मात्र उसे अपने से भिन्न भाषित होगा। देखिए शुभ और अशुभ में जो अंतर है व्यवहार से वो तो है ही, लेकिन उन दोनों में समानता सबसे बड़ी इस बात की है कि ये दोनों आत्मा से भिन्न है, अथवा इनको आत्मा इन दोनों से भिन्न है। अशुभ राग में आत्मा से जितना दूर है, शुभ राग भी आत्मा से उतना ही दूर है। और अशुभ भावों में जो मिठास पाप के परिणामों में विषय जीवन में जो आनंद की कल्पना है वो जितना बड़ा मिथ्यात्व है, तो शुभ भाव में धर्म मानना भी उतनी बड़ा मिथ्यात्व है। ख्याल में आया, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। तो इस तरह से शुभ अशुभ दोनों को चैतन्य के अवलंबन के बल से समान जाने, और चैतन्य का अवलंबन नहीं है क्योंकि ये छुपा हुआ है ना, ये मैसेज व्यसन के त्याग में ये मैसेज छुपा हुआ है वास्तव में, जैसे बनारसी दास जी ने खोल करके बताया कि अशुभ में हार है, शुभ में जीत है, निश्चय से यही जीवा है। इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, ये निश्चय व्यवहार वाला फार्मूला कहाँ कहाँ लागू पड़ता है। ये तो नए चक्र का विषय है। वैसे हम लोग जब शुरू शुरू में नयों के बारे में जानना पढ़ना चालू किया, भीतरा विज्ञान पाठमाल में निश्चय व्यवहार वाला पाठ भी है। डॉक्टर साहब एक बढ़िया उदाहरण देते थे, नए तो तराजू के समान है, जैसे तुला पर तराजू पर कोई भी वस्तु जो है वो तोली जाती है, एक बाजू में आप बांट रख दो एक किलो आधा किलो दो किलो, फिर दूसरे साइड में आप सब्जी रख दो, दाल रख दो, घी रख दो, जो भी रखना हो रखो। समझ में आया ना? तो उस तुला पर हर चीज तोली जाती है। ऐसे ही यहाँ निश्चय व्यवहार की तराजू पर उन्होंने सबके वचनों को तोला है। निश्चय जीवा व्यवहार जीवा, और निश्चय जीवा त्याग और व्यवहार जीवा त्याग। समझ में आया ना? तो जो लोग में जैसे जीवा कहते हैं, इसमें भी मेरे ख्याल से शाम को चिट्ठी बिट्टी आ जाएंगी, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाना वो जुआ है कि नहीं। मैंने ही चांस दे दिया लोगों को। वो देवेंद्र जी से पूछा जाएगा। देखो ऐसा हर काम जिसमें आपकी नींद खराब हो जाए वो सब जुआ है, वो निश्चय से जुआ है। भले आपने दाम नहीं लगाया हो, शर्त नहीं लगाई हो, हैं? लेकिन ये भविष्य में लाभ की कामना से आप कोई अतिरिक्त काम करते हैं सीमा के बाहर, और फिर घबराहट हो जाती है और क्या होगा और क्या नहीं होगा, और खाना नहीं सुहाए, और दर्शन पूजन स्वाध्याय की तो कौन कहे, वो तो सब एक तरफ धरे रहे हैं। तो वो जो जुए से नुकसान वो उससे होगा, परिभाषा में आप उसको क्राइटेरिया में शामिल करते ही नहीं करते, इस पर हम तीनों में विवाद हो सकता है, चारों में रमणी भाई भी साथ में। लेकिन उसका जो नुकसान है वो तो हो ही गया ना। तो ये कितनी गहरी समझ लो चिंतन है, कितना गहरा। शुभ में अपने को ऊंचा मानना, अशुभ में हिंसा मानना, नीचा मानना। और दूसरा वाला तो और ही महागजब का है, देह की मगन ताई यह मांस बसरो। अब देखिए तृप्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। बहुत से लोग ये तर्क को तर्क करते हैं कि वो जो फसल होती है, अनाज होता है, फल फूल होते, सब्जी, उससे भी जीव होता है। ये भाई साहब स्थावर जीवों के शरीर को मांस नाम नहीं दिया जाता, उसमें मांस नहीं बनता है। तरस जीवों के दो इंद्री हो तो भी उससे शरीर को मांस कहते, और जिसको व्यवहारिक जीवन में इतना भी विवेक नहीं है, समझ लो उसके परिणाम कितने क्रूर होंगे, उसका अज्ञान कितना प्रबल होगा। तो हमें तो पता ही नहीं था, और पता किया बताया भी तो भी व्हाट इज द प्रूफ, तो जिनवाणी दर्शन का आप उसको प्रूफ करके बताओ, उसे नरक से बचाना हो तो तुम उसको प्रूफ करने के लिए जाकर भी बताओ। सामान्य श्रद्धालु हो गए मंद कसाई हो गए तो कहने मात्र से वहां यार मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो वो जो अपना निर्दोष भोजन है, समझ लीजिए ये अनाज वगैरह, इसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर मांस भक्षण ही हुआ ना। यानी बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूँ, बिन सोधे बिन देखे वस्तु उठाई, ये सब आता है ना आलोचना पाठ में। हाँ, बिन सोधा भोजन खाया, यदि जब भोजन की सामग्री का प्रयोग करते समय हम उसका उचित रीति से शोधन या अवलोकन नहीं करते कि इसमें कोई जीव तो नहीं है, ऐसा यदि हम विचार नहीं करते हैं तो हम मांस भक्षण के त्यागी नहीं है। समझ में आया? ये तो क्रिया की बात है, व्यवहार की बात है। ऐसा हो भी जाए, ऐसा विवेक हो भी जाए और वो तरह जीवों की हिंसा का त्यागी होवे, सावधानी पूर्वक आचरण करता होवे, ये मैंने खाया और मैंने नहीं खाया, क्या मैं तो दो टाइम के अलावा तीसरे टाइम खाता नहीं हूँ, या दस दिन मैंने एक ही टाइम खाया, या दस दिन मैंने नहीं खाया, उपवास किया, तो देह की क्रिया का कर्ता अपने को माना तो देह में अहम बुद्धि हुई। और ये क्या है देह, ये क्या चीज है, ये तो हार मास का ही पिंजरा है ना, तो उसमें अहम पना हुआ तो उसने अभिप्राय में मानसर देश को देह को अपना माना, तो देह की मगनता ही यह मांस भस्म। ये बहुत आश्चर्य की बात है। हमने पहली बार जब विक्रा विज्ञान पाठमाला भाग दो पढ़ी, खुद परीक्षा दी थी उसकी, हम जबलपुर में थे और कॉलेज भी पढ़ते थे और खुद पढ़ के ये किताबें इसकी परीक्षा भी देते थे। जब ये छंद आया तो इतना आनंद हुआ और इतना आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा कि ये किताबें पढ़ना हमारे लिए सार्थक हो गया। जब तक बाल बोध नहीं पढ़ी थी तब तक निश्चयी माने क्या होता है इसका अर्थ नहीं पता था। बोलते थे जरूर निश्चयी निश्चयी निश्चयी, परंतु निश्चयी क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जेब का मोबाइल भी बंद और माइंड का मोबाइल भी बंद है ना, है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। अब इसकी ये अब जैसा है, ज्यादा करेंगे तो ट्रैक चेंज हो जाएगा, लेकिन जानकारी देने के लिए जरूरी है। हम भगवान के सामने किसी को जैसे भी करें ना, लौकिक व्यवहार करें, हाल चाल पूछें, कभी कभी तो क्या होता है कि मजबूरी में जरा गर्दन तो हिलानी पड़ती है। एक दिन मंदिर में एक तीन लोग के नाथ के लक्ष्य से जो भाव होने चाहिए, पूजा है, पाठ है, स्वाध्याय है, दर्शन है, वंदना है, सामायिक है, इत्यादि इत्यादि, उसके अलावा अगर कोई लौकिक व्यवहार निभाया जाता है तो आप समझ लीजिए वो एक हमारे लिए वो भी विपरीतता है, ख्याल में आए ना। तो बात तो इसकी चल रही थी, देह की मगनताई, तो देह को अपना माना। अब कोई बिल्कुल समझ लीजिए अहिंसा महाव्रत का आचरण कर रहा है, नग्न दिगंबर हो गए, इसका भी कॉन्सेप्ट अपन समझते नहीं है, ये क्यों नग्न क्यों रहते। कई लोग तो तर्क देते हैं कि समय के अनुसार अपने को बदलना चाहिए, ये धर्म पीछे क्यों रह गया, भारत के बाहर उसका उतना प्रचार क्यों नहीं है। आप देखो बौद्ध धर्म कितना फैला है बाहर और दूसरे धर्म कितने फैल रहे हैं, क्योंकि जैन लोग बहुत कट्टर है। अब वो 2000-5000 वर्ष पहले की बातें कि साधु लोग उसमें नहीं बैठ सकते काय में एरोप्लेन में, तो वो तब की बात थी, उस समय हवाई जहाज थे ही नहीं, अब तो हो गए हैं। तो अपने को भी समय के अनुसार आप नहीं बदलेंगे तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। वो जी सही है कि गलत मार्ग मार्ग लगा राइट और रॉन्ग, ऐसे लोगों के तर्क सुन के उनके ऊपर मुझे उतनी ही करुणा आती है जितनी वितरागी संतों को भव्य जीवों के ऊपर आती है। क्या इनका चिंतन है, क्या इन्होंने जैन धर्म का स्वरूप समझा है, क्या इन्होंने जैन साधु का स्वरूप समझा है कि साधु इसलिए होते हैं कि धर्म को दुनिया में फैलाना है। अरे सारी दुनिया तो कभी जैन धर्म की अनुयायी हो ही नहीं सकती। मैं आपसे शीतलों के काल में भी मिथ्या दृष्टि होते थे कि नहीं होते थे, समो सरल जी भी मिथ्या दृष्टि जाते कि नहीं जाते, तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाती, भगवान का उपदेश चलिए सभी को सम्यक दर्शन हो जाता, नहीं होता तो वे क्या हुए, वे जैन रहेगा अजय नहीं रहे, मारी जी कौन था? आप कुल से जैन कहो, नाम से जैन कहो, ख्याल में आए ना, लोग व्यवहार से जैन नाम देव वो अलग बात, पर क्या असल में सारा विश्व जैनी हो सकता है क्या कभी? और आपको भी जैन धर्म फैलेगा नहीं, बचा रहेगा या खत्म हो जाएगा, पंचम काल के अंत में तो होने ही है, फिर दोबारा चालू होगा, फिर दोबारा तुम का चिंता करके तुम अपना काम करो, निकल जाओ भाव कर्मण में से बाहर है, तो इस बात की चिंता में हम अपना मन स्वभाव खराब करें। तो ये जो नम्रता का जो कॉन्सेप्ट है इसका मूल आधार भी अहिंसा है, क्योंकि परिग्रह जहाँ होगा वहाँ हिंसा जन्म लिए बिना नहीं रहेगी, यही तो मूर्छा परिग्रह, तो मूर्छा का परिणाम ही राग है, और फिर परिग्रह की व्यवस्था, परिग्रह की चिंता, परिग्रह का आरंभ, परिग्रह की समझ लो तत्संबंधी विकल्पों का जाल, और फिर उसकी समाज, इन सब में हिंसा हुई बिना नहीं गई। तो जो पूर्ण अहिंसक आचरण करते हैं उनका जीवन समझ लो बाह्य जीवन नग्न दिगंबर ही होता है, और फिर वैसे 28 मूल गुणों का वो पालन करते। यहाँ तो दूसरी बात कहना है कि ऐसा करने पर भी मैं नग्न हूँ, मैंने कपड़ा छोड़ा, मैं देख करके चलता हूँ, इत्यादि इत्यादि प्रकार की जैसी मान्यताएं पहले थी वैसी ही रही, तो कोई से फार्मूले में चला जाएगा, देह की मगनताई है मांस भकीबो, ऐसा सब में लगाना, मैंने तो एक झलक मात्र दिखाई है, चाहे मैं ये निकल गया, हाँ चलो इसकी वेट कर रहा था ना। एक वो मुझे अच्छा लगा वो एक टॉपिक कि सप्त दर्शन का भी आप निश्चय निश्चय मांस भक्षण व्यवहार मांस भक्षण निश्चय पर स्त्री से प्यार सौ पराई सौ गए बेटी का चाय चोरी कुमति को संग गणिका को रस चख लो खोटा ज्ञान वेश्या का संग करना ये व्यवहार में कहा जाता है। वो त्यागी हो गए लेकिन कुमति ज्ञान कि मिसाइल कैसे बनाना, अनुभव कैसे बनाना, ऐसी चीजें कैसे बनाना जिससे और ज्यादा विषय कषाय का साधन जुटे उसका पोषण हो गए, ये सब क्या है? ये कुमति ज्ञान, ये निश्चय से वेश्या समझ है, वो हमारी जो कुबुद्धि है वो ही वेश्या है। क्या बोला? जो विषय कषाय का पोषण करने वाली हमारी खोटी बुद्धि है वो ही वास्तविक वेश्या है, और ऐसी बुद्धि रखना, ऐसी बुद्धि होना, उस रूप प्रणमन होना, ये निश्चय वेश्या सेवन, जो इसमें भी निश्चय व्यवहार सातों व्यसन में निश्चय व्यवहार है। निर्दय वे प्राणघात सर्वो, इसमें आएगा संकल्प की हिंसा, निर्दय वे प्राणघात सर्वो यह शिकार, निर्दय होकर के प्राणियों का घात करना, कोई इसमें समझ लो मजबूरी की बात नहीं है, शौक है, मजा है, आनंद है, विषय कषाय का पोषण है, इसका एक फार्मूला है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। प्रारंभिक हिंसा को शिकार क्यों न माना जाए, उसमें भी तो अपन वो कर रहे हैं प्राणघात, ये निर्दय, मजबूरी में हिंसा करना पड़े तो संकल्प की हिंसा नहीं। क्या बोला? मजबूरी में हिंसा करना पड़े गृहस्थ जीवन में तो आरंभी और उद्योगी हिंसा में जाए, एक क्रूरता पूर्वक हिंसा करे वही की हुई, तो क्रूर परिणामों से हिंसा हो गए तो वो शिकार में निर्दय है प्राणघात कर दू यह शिकार, इसमें चला जाएगा। तो आप देखना इसको और पूरा डिटेल वहाँ पढ़ना, पाठ बहुत बहुत है, तीन चार पेज का है। अब देखिए इसमें भी 12 वर्षों की शुरुआत की है, कैसे की है? जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते। तो देखो भाई, वास्तव में जो मोक्ष मार्ग है, वास्तविक धर्म है, उसका प्रारंभ तो द्रव्यानुयोग से होता है। क्या ये आठवें अधिकार में टोडर बंजी ने ये मैसेज दिया है, जैन धर्म में तो ऐसी परपाटी है कि पहले बड़ा पाप त्याग करके फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। मिथ्यात्व बैरी को सत्य वसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। एक ये वाला है और दूसरा एक वो है कि पहले द्रव्यान योग के अनुसार भेद ज्ञान करके आत्मानुभव करके सम्यक दृष्टि हो गए, फिर चरणान योग के अनुसार वृत्ति हो। जीवन में इस तरह का क्रम है वास्तव में देखा जाए। लेकिन एक बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका जिसको डॉक्टर कहते मार्ग का मार्ग, ख्याल में आया है ना, यहाँ से आपको बम्बई जाना है तो ट्रेन तो आपको स्टेशन पे मिलेगी, वो तो हमारे यहाँ डेडलाइन में पड़ोस में से निकलती है, वो खड़ी नहीं होती। कई लोग कल्पना करते मधुर कल्पना, यार यहाँ एक स्टेशन बन जाता तो कैसा रहता। भाई साहब आपका कंपाउंड चला जाएगा, मत बनने दो, 4 किलोमीटर दूर है, वो ही ठीक है। तो वहां तक जाने के लिए भी कोई साधन चाहिए। ट्रेन पकड़ना है तो जहाँ से ट्रेन मिलती है वहां तक जाने के लिए भी साधन चाहिए। तो एक समझ लो सामान्य जैनाचार, जिसकी मैंने 2 दिन पहले सूचना भी दी थी, हमारे सरस्वती भवन में वो फर्स्ट फ्लोर पे रखी है, बेंच पे बहुत सारी पुस्तकें सामान्य जैनाचार, तो वो होना चाहिए। तो उपदेश की शैली में वहां से भी शुरुआत करें। जब हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो एक रिवाज है कि बच्चा जब 30-40 दिन का होता है ना, तो उसका कोई संस्कार विधि कुछ ऐसी होती है तो उसको जैनी बनाते, जैनी बनाते। कैसे जैनी बनाएंगे, समझ में आया, तो सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, फिर उसका प्रोग्राम करेंगे, सबको भोजन कराएंगे। तो चलो आपस का हुआ, बच्चे का क्या करेंगे। मुझे तो तब समझ में आया कि हमारी बहन का पुत्र हुआ, तो मैं तो कॉलेज में पढ़ रहा था, तब की बात है। तो आपको करना है इसकी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या विधि करें। तो मैंने उसको गोदी में लिया, नमोकार मंत्र सुनाया, चत्तारी मंगलम अहंता मंगलम सिद्धा मंगलम ये सुनाया, ख्याल में आया ना, और अभी तुम्हारे मधुमास मध्य का त्याग। अब वो क्या समझे, ते उसकी माँ समझ ले, यही बहुत है। ये यहाँ से देखो, इतनी छोटी उम्र से बच्चे को ये संस्कार डाल। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरुदेव के नाम पे कई ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप पे, मुमुक्षु मुमुक्षु कान महान, और कभी कभी उसमें ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि ये दवाई शहद के साथ में खाइए तो फायदा होगा। अगर क्या है बुद्धि है, तो भेजने वाले को इतना विवेक नहीं, ये इतना मिसयूज कि तुम गुरुदेव के नाम का जो बना हुआ है, जैन के नाम का बना हुआ है, उसमें तुम आयुर्वेद के फार्मूले भेज रहे हो और उसमें शहद के साथ में ये दवाई खाना चाहिए, ये लिखा जाए। मतलब कितना अंधानुकरण है, हाईटेक जो साधन है, तकनीकी साधन, उसका भी कितना मिसयूज है, कितना अंधानुकरण। जो आया तो समझ लो भेज दो सर सबको, कौन सा पैसा लगना है, बस एक क्लिक तो करना ही है, बस और क्या करना है। तो भैया सम्यक दर्शन होने पर ही जैनत्व की शुरुआत होती है वास्तव में देखा जाए। लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, वो जैसे पैकिंग में माल रहता है, ऐसे चरणानुयोग की पैकिंग में द्रव्यानुयोग रहता है। तो उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है कि अभी सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा, वो कर्मबद्ध पर्याय समझेगा, वो वस्तु स्वतंत्रता समझेगा, वो दृष्टि का विषय समझेगा, उसके परिणाम स्वसन्मुख होंगे। लेकिन उसकी तैयारी के लिए उसके पहले जीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु और अनेकांतमय वस्तु को शारवाद शैली से कहने वाली जिन्मा, ये ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में निमित्त हो सकते हैं, दूसरा कोई निमित्त भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की बात तो नहीं आई देवी लाल जी है, कोई किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आया, चाहे गुरुदेव का हो चाहे कोई महान दूसरे व्यक्ति हो, नाम की मुख्यता नहीं है। आदिनाथ का नाम नहीं है, महावीर का नाम नहीं है, हितरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु, दयामयी धर्म, और ये तीनों मानो साक्षात नहीं हो दोनों तो इनकी परंपरा में होने वाले ज्ञानी ध्यान में आए ना। तो ये एक प्रारंभिक भूमिका से शुरुआत होती। ये यहाँ तो ज्ञानी की परिभाषा थी, जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते। अभी ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में अपने को देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट करता है, तब वह व्रति श्रावक कहलाता है। ये चरणान योग का अंतरंग पक्ष है। यद्यपि ये जीव के शुद्ध परिणामों की बात है, भीतरागी परिणामों की बात है, तो हम इसको द्रव्यान योग में भी ले सकते हैं। ये द्रव्यान योग में वास्तव में है आत्मानुभूति वो शुद्ध चरणान योग। क्या बोला? आत्मानुभूति वो शुद्ध चरणान योग है। द्रव्यान योग तो सिस्टम बताता है, द्रव्य व्यवस्था क्या है, तत्व व्यवस्था क्या है, और उसको स्वीकार करना हो तो आचरण की बात हो गई ना। फिर तो उसमें एकाग्रता होना वो तो आचरण की बात हो गई ना है। इसलिए चरणान योग बहुत व्यापक अर्थ रखता है, ये समझना चाहिए। आत्म शुद्धि प्रकट करता है और उसकी पहचान करना नहीं उससे की क्या, वो आत्म शुद्धि का जो माप तोल है वो कैसे किया, करुणान योग की भाषा में किया। कैसे? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव। और इनको परिभाषित करना भी बड़ा नाजुक काम है, वास्तव मुश्किल भी है नाजुक भी है, सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है, जरे भी क्लिप हो सकते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सब भावदीप का नाम का एक ग्रंथ है, शायद यहाँ भी होगा हमारे सरस्वती भवन में, भावदीप का दीपचंद जी काफी बार का, उसमें अनंतानबंदी के उदय में सेवन लेसिया होती है तो कैसे कैसे कार्य करता है, क्रिया की प्रधानता से समझाए। अप्रत्याखानी का उदय हो अनंतानबंदी का नहीं हो, ख्याल में आए ना, तो चौथे गुरु स्थान वाले के कैसे कैसे परिणाम होते, पांचवें वाले के कैसे होते, पहले वाले की शुक्ल लेसिया होगी तो कैसे परिणाम होंगे पहले गुरु स्थान वाले की है, और छठवें गुरु स्थान वाले की शुक्ल लेसिया होगी तो कैसे परिणाम होंगे। बहुत सुंदर वर्णन एक 20-25 पेज में वो भावदीप का में है। एक बार मेरा भी विचार है कभी यहाँ उसका स्वामी स्वाध्याय में कभी लेंगे, जब भी अवसर आएगा वहां से आप ले सकते। देखिए अपन क्रियाओं की सापेक्षता से जो कषायों की तीव्रता मंदता का नाप करते हैं, वास्तव में वो कषाय नहीं है, वो लेस जाए। जैसे वो चित्र दिखाते हैं मंदिरों में और वो आम के झाड़ को तोड़ रहे हैं बच्चे, वो छह प्रकार का बताते हैं ना, तो कोई तो झाड़ ही काट डालने के लिए तैयार है कृष्ण लेसिया वाला, थोड़ी जिसकी मंद कषाय है नीम लेसर झाड़ काय को काटते हो, ये डाली में बहुत सारे आम है तो एक डाली काट लो, पूरा डाल का बचने दो, पूरा झाड़ का बचने, ऐसे छह लेयर उसमें बताए लेकिन है। हाँ ये है ना सामने ये, लेकिन अभी अनंतानुबंधी किसको कहना। आप देखिए करुणानियोग के ग्रंथों में भी आत्मशक्ति के प्रकट नहीं होने देने की जो समझ लो आत्म भावों में घातक जो है निमित्त, उससे उसकी परिभाषा बताए। जिसके उदय में जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव बनाई परिभाषा क्या, जिसके उदय में जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता वो अनंतानुबंधी, जिसके उदय में देश चारित्र नहीं हो सके, संयम के भाव नहीं आने, सम्यक होने के बावजूद भी है लेकिन संयम के भाव नहीं आने, वो क्या है वो अप्रत्याख्यानी, और जिसके हृदय में मुनि होने के सकल संयम के भाव नहीं आ रहे वो प्रत्याख्यानी, और जिसके हृदय में यथाख्यात चारित्र नहीं हुए वो संयम। ऐसी परमात्मा बनाई ग्रंथों तो उससे नापा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। ना तो हमें कैसे पता चले, दूसरे का पता नहीं करना, अपने परिणाम तो अपने को पता चलता ही है कि हम क्या चाहते क्या नहीं चाहते, तो अपना तो पता चलता ही है ना। तो अनंतान मंदी और अप्रत्याख्याना वरण कसाय के उदय के अभाव में अपने को अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट करता है वो गति श्रावक कहलाता है। अब देखिए चरणानुयोगी एक बात और समझ लेना कि जैन दर्शन में जो चरणानुयोग का विकास ग्रंथों में हुआ आचार्यों ने लिखा मनुष्य गति की मुख्यता से ही सारा कथन है, वो देवगति का ही लागू नहीं पड़ता, बाह्य क्रिया वाला मामला है। ख्याल में आया ना, बड़ी मजेदार बात है। लिखने वाले भी मनुष्य गति के और वो जानते हैं कि पढ़ेंगे कौन, वे भी मनुष्य गति के। तो अपन जब मनुष्य गति वाले ही सब चर्चा कर रहे हैं तो सारा जो कथन है मनुष्य गति की मुख्यता से, इसलिए साहब वो तो मूल गुण का पालन नहीं करता, वो तो ऐसा नहीं करता, वो कहाँ पानी छान के पीता होगा, तो दवाई दी जा रही है मनुष्य की, वो तुम खिला रहे तिरंसों को, तुम लागू कर रहे हो तिरंसों पे। और कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न करता है तो मैं पूछते तुम क्या चाहते, तुम एक काम करो पहले तिरंस हो जा, फिर वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तुम्हें जो तिरंसों को मिलती। ये क्या मतलब है इसका है, करणान योग और द्रव्यान योग, ध्यान से सुनना, करणान योग और द्रव्यान योग इनके नियम विश्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं, चारों गतियों पर लागू होते हैं। अनंतान मंदी का उदय होगा तो जीव मिथ्या दृष्टि हो गई होगा, ख्याल में आए ना, चारों गतियों में। और दो कषाय का अभाव होगा तो पंचम मूलस्थान हो गई होगा, और वो चाहे मनुष्य में हो चाहे प्रिंस में, बाकी नरक और देव में होता नहीं है, ख्याल में आए ना। लेकिन बाह्य क्रिया वाला नहीं है वो मनुष्यों में ही लागू होगा, वो त्रिंसों में लागू नहीं होगा। इसलिए देवों में ध्यान से सुनना जरा, बाहर में कोई भोगोपभोग की क्रिया भले न देखी जाए, तो सर्वा सिद्धि वाले को कौन सा इंद्रिय का भोग है और कौन से काय के जीवों की हीनता है, क्या दिखता है उसके जीवन में, बहुत छोटा शरीर है समझ लो, परिग्रह भी कम है, कषाय शुक्ल लेशिया है, तीर्थंकरों के कल्याणक में आने का भी भाव नहीं आता, मतलब क्रिया की प्रधानता से देखा जाए तो लगभग महाव्रतियों जैसा आचरण, लगभग जैसा ऐसा मैंने लगाया। ख्याल में आए, जीवन में कुछ दिखते ही पाप की क्रियाएं, लेकिन करणान योग के चश्मे से देखेंगे तो वो अवृत्ति है, असंयमी है। तो इसलिए मनुष्य गति के संदर्भ में क्रिया की प्रधानता से विचार करना और अंदर के स्वरूप के बारे में करणान योग और द्रव्यान योग से हिसाब किताब, दोनों अनियोग साथ में देखो, अनंतान मंदी और अप्रत्याख्याना वरण के कषाय के उदय का अभाव, ये किस अनियोग की भाषा है, करणानुयोग की। देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट करता है, अब आत्म शुद्धि को किसमें लोगे, द्रव्यानुयोग में भी ले सकते करणानुयोग में भी, क्योंकि द्रव्यानुयोग में अनुभूति की भी तो बात आती है ना, और वो वृत्ति श्रावक कहलाता है, तो वृत्ति श्रावक तो करणानुयोग की भाषा है। तो तीनों तरफ से उन्होंने वो उसकी परिभाषा बांधी। अभी देखना, जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते, व्रतों में भी निश्चय व्यवहार, पाप में भी निश्चय व्यवहार, समझ में आया, निश्चय हिंसा और व्यवहार हिंसा, निश्चय से आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना इसी का नाम हिंसा है, और व्यवहार में पर दूसरे जीवों के प्राण घात करना वो द्रव्य हिंसा है, वो उसको व्यवहार से हिंसा कहते। यानी निश्चय व्यवहार पाप में भी लागू पड़ता है अरे निश्चय व्यवहार तो निरूपण करने की पद्धति है, किसी भी वस्तु का उसके स्वरूप से निरूपण करना, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो चाहे धर्म हो चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, ये इन्हीं से अपना पाला पड़ता है ना ज्यादा, तो कोई उसका यथार्थ स्वरूप का निरूपण करना तो निश्चय, और जैसा है नहीं वैसा उपचार से कहना उसका नाम व्यवहार। तो निश्चय वृत विरत, विरत का क्या मतलब है, पाप क्रिया से विरत, वही जिमान स्तुति में आता है, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिन वाणी। बहुत बढ़िया लगती मुझे स्तुति, और ये जिसने पता नहीं किसने लिखी, लेकिन किसी ने बताई कि नियम सार की आठवीं गाथा की टीका के आधार से ये स्तुति लिखी गई है, कलश कलश है। तो देखो विरति यानी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, किन के प्रति, पापों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति, और वास्तव में तो पापों का जन्म कहाँ से होता है, इंद्रिय विषयों से, ये भी समझ लो जरा। आत्म के अहित विषय कषाय, दो शब्द है विषय कषाय, क्या अंतर है, विषय कषाय एक ही है, युगल शब्द है ज्वाइंट के, अलग अलग चीजें हैं, विषय परद्रव्य है, कषाय परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जीव के राग द्वेष परिणाम है, ध्यान में आया ना। तो विषयों के पोषण के लिए, विषयों की पूर्ति के लिए पाप का जन्म होता है, क्यों भोजन करना पानी पीना ये शरीर के लिए भले आवश्यक है, ये विषय है ना, ये ठंडी हवा चाहिए तो ठंडी हवा के लिए कूलर लगाना एसी लगाना और उपचार करना उसमें हिंसा हो, समझ में आया ना। और अमृतसर आचार्य देव तो लिखते हैं कि असल में पाप तो एक ही है, कौन सा, हिंसा, बाकी झूठ चोरी खुशी परिग्रह तो उस हिंसा को सुरक्षित करने के लिए, हिंसा को विकसित करने के लिए, उसको छुपाने के लिए किए जाते। तो बाकी चार तो शिष्यों के उदाहरण देकर के समझाने के लिए पांच वेद किए हैं, असल में तो हिंसा ही है। तो विषय से विरति जिसकी हुई वो पापों से बचेगा। ये देश विरत क्यों हुआ, पाप क्यों कम हो गए, उसके मर्यादित क्यों हो गए, क्योंकि असंयम दशा में विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति थी तो पापों में भी तीव्रता थी। अब वो विरति हो गई यानी आसक्ति मंद हो गई और स्थूल विषयों का त्याग हो गया तो ऑटोमेटिक पापों का भी त्याग हो गया। ऐसा है कि इससे जो आत्म शुद्धि प्रकट हुई वो तो निश्चय विरत है, मतलब उसमें तो एक चैतन्य की लीनता, चैतन्य की अनुभूति, वहां तो पाप का भी विकल्प नहीं और पुण्य का भी विकल्प नहीं, तो वो तो वास्तविक विरत है। और उस आत्म शुद्धि के सद्भाव में जो हिंसा आदि पांच पापों के त्याग तथा अहिंसा आदि पंचाणु व्रत आदि के धारण करने रूप स्वभाव होते हैं उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं, यानी शुभ भावों को व्रत कहना वो व्यवहार। क्यों व्यवहार क्यों है, क्योंकि वो वास्तविक व्रत नहीं। व्यवहार की क्या परिभाषा, तीन पॉइंट बताता हूँ मैं जब निश्चय व्यवहार की चर्चा करता हूँ तो व्यवहार नहीं में 3 पॉइंट फार्मूला लागू होता है। पहली चीज स्वयं परमार्थ नहीं है, ये पहले स्वयं परमार्थ हो गए तो परमार्थ ही हो गया ना, फिर उसको व्यवहार के लिए क्या जरूरत है। दूसरा परमार्थ का प्रतिपादक है, ये व्यवहार व्रत है वो क्यों हुआ, क्योंकि अंदर में आत्म शुद्धि हुई तो बाहर में सहज ही एक रस हुए, तो ये उसका ज्ञान कराते जैसे धुआं अग्नि का ज्ञान कराता है, ख्याल में आए ना, हेतु से शास्त्र का ज्ञान होता है, ऐसे व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान होता है। तो ये शुद्धि देख कर ये समझ सकते हैं कि ये आत्म शुद्धि का ही प्रतीक है। तो सहज हो गए उसकी बात है, खेचतान करने की बात नहीं है। और तीसरा क्या है, अन्यत्र भटकने से बचाता है। ये व्यवहार नए का प्रयोग जो है इसमें, जैसे चरणान योग में जो व्यवहार है वो पापों से बचाएगा, ख्याल में है ना, वितरागता की साथ में लाएगा, वितरागता के प्रसंगों में लाएगा, उसके निमित्त के सन्मुख करेगा, वितरागता का पोषण करेगा, तो परमात्मा का प्रतिपालक पोषक। इस प्रकार के स्वभाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट होते। देखो सहज शब्द का जो वैसे व्याकरण से अर्थ देखा जाए, एक तो रूढ़ी वाला सहज माने जबरदस्ती किए बिना, खींचतान किए बिना, भूमिका के अनुसार वो चीज अपने आप होती है, प्लानिंग करके नहीं होती है कि मैं इस गुण स्थान वाला हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, समझ में आए ना, ऐसे प्लानिंग करके नहीं होती है, तो उसको सहज कहते हैं। एक कली मैंने पंडित साहब के प्रवचन में एक बढ़िया व्याख्या सुनी, सहज क्या है इसका, सहज साथ में उत्पन्न होने वाला, सह माने साथ में भी होता है ना, देखो सहोदर, सहपाठी, सहभावी, सहकर्मी, ऐसे कितने नाम होते हैं, तो सहज तो जो आत्म शुद्धि के साथ में उत्पन्न हुआ स्वभाव वो सहज हुआ, किसके साथ हुआ, वो व्रताजी का जो स्वभाव है वो किसके साथ में हुआ, आत्म शुद्धि के साथ में हुआ, तो वितराग भाव के साथ में होने वाला स्वराग वो सहज होता है, समझ में आया। वो व्रति जीव इतना कम पढ़ा लिखा हुए, भोला भाला ग्रामीण अंचल का हुए, किसान हुए, लेकिन वो इनकी भाषा और परिभाषा भी नहीं जानता हुए, अमृतों की, महाव्रतों की, निश्चय की, व्यवहार की, ये इतनी शुद्धि अंदर में स्वरूप के अवलंबन से बढ़ गई और ये भाव उसके प्रकट हो गए, इसलिए वो सहज है। अपन किताब पढ़ पढ़ के करें, समझ में आया ना, तो वो असहज है। तो इस तरह की निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत की जो व्याख्या इसमें की गई है वो भी हमें ये बताती है कि चरणान योग की शैली में भी अंदर में कण कण में, रोम रोम में वितरागता ही भरी हुई है, अकेली जड़ की क्रिया की बात नहीं है, भले भाषा जड़ की क्रिया की तरह से कही जाती हो लेकिन वो क्रिया होती इसलिए है कि अंतरंग में वितराग भाव है। मेरे ख्याल से अपना समय पर्याप्त हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे, दोपहर को फिर अपन चर्चा करेंगे, अभी यही विराम देते हैं।